दिन भर 13 नवंबर दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 70 साल का काला धन 70 महीने में साफ कर देंगे।
जरा 8 तारीख रात 8 बजे का टीवी खोल करके देख लो मोदी ने क्या किया।
क्या प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक ढंग से फैसले करते हैं?
जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, चिंता इस बात की हो रही है कि प्रचंड बहुमत से हुए चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री कहीं ऐसी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं जो दिशा लोकतंत्र का निषेध करती है।
संडे दिन भर में मिलिए जाने माने पत्रकार शेखर गुप्ता से।
इंदिरा जी से अभी कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उतनी ताकत भी नहीं है और ये भारत बहुत बदला हुआ है। भारत में बहुत राज्य हैं जो इस सरकार के पास नहीं है, ना आ सकते। अब वो समय भी चला।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट प्रतिबंधित किए जाने का आज पांचवा दिन है। रविवार को भी बैंक खुले रहे, जहां नोट बदलने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि नोट बंद किए जाने के बाद लोगों को हो रही परेशानी ने आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट प्रतिबंधित करना एक जरूरी कदम था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लोगों को होने वाली परेशानियों का एहसास है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी आई है और लहरों ने दक्षिणी द्वीप के उत्तर पूर्वी तट को छुआ है। अधिकारियों ने लोगों से तटीय इलाके छोड़कर ऊपरी इलाकों में जाने की अपील की है। उनका कहना है कि शुरुआती लहरों से और ऊंची लहरें भी आ सकती हैं। एक भूकंप प्रभावित व्यक्ति ने बताया, मैं सो रहा था और अचानक आधी रात के बाद मेरी आंख खुल गई। बिस्तर हिल रहा था, मेरी पत्नी भी जाग गई। यह करीब एक मिनट तक रहा लेकिन ज्यादा कुछ गिरा नहीं। दीवार पर टंगी एक तस्वीर जरूर झुक गई है, भूकंप के गुजरने का बस यही निशान दिख रहा है। इराक के सैन्य बलों का कहना है कि उन्होंने प्राचीन शहर निमरूद को स्वघोषित इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। इस्लामिक स्टेट ने 2 साल पहले प्राचीन धरोहर वाले इस शहर पर कब्जा कर लिया था और कई ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट कर दिया था। किसी समय असीरियाई साम्राज्य की राजधानी रहे इस शहर को इस्लामिक स्टेट ने लगभग नष्ट कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे युद्ध अपराध करार दिया था। इराकी सेना का कहना है कि उसके बलों ने निमरूद और आसपास के गाँवों को पूरी तरह मुक्त करा लिया है। म्यांमार की सरकार ने देश के पश्चिमी इलाकों में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के गांवों पर हेलीकॉप्टर से गोलीबारी करने की बात स्वीकार की है। सरकारी मीडिया के मुताबिक संदिग्ध रोहिंग्या चरमपंथियों और सरकारी सैन्य बलों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इस मुठभेड़ में 8 लोग मारे गए जिनमें 2 सैनिक थे। बांग्लादेश से सटे रखीने प्रांत में रह रहे अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में भेदभाव का सामना कर रहे हैं। वहीं रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार नस्लीय आधार पर हत्याएं कर रही है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त राजनेता आंग सान सूची की सरकार का कहना है कि सैन्य अभियान हमलावर चरमपंथियों की तलाश में चलाया गया है। दक्षिण कोरिया के अभियोजकों का कहना है कि वो राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे से पूछताछ कर सकते हैं। कल राजधानी सोल में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की तीसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। दिन भर का सीधा प्रसारण। ये आवाज आप सुन रहे थे बिहार के कैमूर के सिरिहिरा गांव से, जहां बेटी की शादी की वजह से चिंता में डूबा एक अधेड़ आदमी जिसका नाम राम अवध था चल बसा। राम अवध के बेटे विकास का दावा है कि बहन का तिलक चढ़ना था और पिताजी परेशान थे क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए और बैंक से पैसे नहीं निकल रहे थे। कुछ इसी तरह के मामले मध्य प्रदेश के सागर जिले में और महाराष्ट्र में मुंबई के पास मुलुंड में सामने आए, जहां नोट बदलने की लाइन में लगे बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया। ये वो मामले थे जो मीडिया की रोशनी में सामने आए। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं भारत में हो रही होंगी, कह पाना मुश्किल है। नोट बदलने की समस्या हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में जस की तस बनी हुई है। उधर जापान की यात्रा से लौटे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी राज्य कर्नाटक और गोवा में अलग अलग कार्यक्रमों में आज इस बात पर दुख जताया कि लोगों को तकलीफ हो रही है, इसका उन्हें खेद है। लेकिन वो यहीं नहीं रुके।
बात लूटा है मेरे प्यारे देशवासियों, लूटने वालों को आपने देख लिया है। 70 साल देश लूटा गया है, मुझे 70 महीने दीजिए, मैं साफ करके रख दूंगा। दोस्त यही लोग मोदी ने क्या किया। जरा 8 तारीख रात 8 बजे का टीवी खोल करके देख लो मोदी ने क्या किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन शब्दों में अपनी बात कही, जिस अंदाज में, जिस शैली में बात कही, उससे कई जानकारों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्द उनकी भावना से मेल नहीं खाते। मेल खाते भी हैं तो कहीं कहीं ऐसा संकेत देते हैं जैसे वो किसी से बदला ले रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण और उसमें इस्तेमाल हुए शब्दों को लेकर यही सवाल मैंने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से पूछा।
मैं समझता हूं कि राजनीतिक जो एजेंडे होते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद या चुनाव के पहले, वो अपनी जगह हैं, और गवर्नेंस का जो इश्यू होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की पूरी जो स्ट्रेटजी है, जो विचारधारा सामने आ रही है, गवर्नेंस की विचारधारा, उसमें कहीं ना कहीं वो टकराव कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के साथ सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन या कॉन्फिडेंस में उनको लेने की बात नहीं, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि विपक्ष को रौंदते हुए वो उनका जो विजय रथ है, जो चुनावी विजय रथ, वो गवर्नेंस के दौरान भी दिखाई पड़ता रहे। क्योंकि जब आप ये कहते हैं चुनाव के दौरान कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आप अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ें और कहें कि हम 70 वर्षों के करप्शन का हिसाब 70 महीने में कर लेंगे, तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि 150 साल का इतिहास क्या है। तो इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से भविष्य की बेहतर नींव और बुनियाद नहीं रखी जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझनी चाहिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रचंड और भारी बहुमत से जीता हुआ देश का बड़ा नेता बड़े दिल के साथ, व्यापक सोच के साथ सामने आवे। कहीं न कहीं उनके पूरे एजेंडे में एक तरह का विंडिक्टिव होने की जो एक मुहिम है वो दिखाई पड़ती है।
कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने जो काला धन वापस लाने का वादा किया था, हर भारतीय नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे ऐसा वादा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, वो उसे वापस नहीं ला पाए। विपक्ष का आरोप है कि उसको दबाने के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, 1500 के नोट बंद किए और देश के भीतर जो काला धन है उस पर रोक लगाने की बात कही। आज हम सुन रहे थे कर्नाटक के बेलगांव में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, उनकी भाषा पर ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं कि विपक्ष कहता था कि मोदी ने क्या किया। 8 नवंबर को 8 बजे की टीवी चैनल देखिए, पता चल जाएगा मोदी ने क्या किया। ये इस तरह की भाषा शैली, इस तरह के शब्द, आपको नहीं लगता कि भाषा में और विनम्रता हो सकती थी?
आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि इस तरह की जो भाषा है वो एक लोकतांत्रिक मुल्क के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये भाषा किसी बादशाह की भाषा हो सकती है, ये किसी सेनापति की भाषा हो सकती है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी इन एजेंडे पर, इन इश्यूज पर बोल रहे हैं, वो एक लोकतांत्रिकता का जो कंटेंट है उसमें गायब है। उसमें विचार विमर्श का, डिस्कोर्स का, लोगों को एक साथ लेकर चलने का, ये चीजें बिल्कुल गायब है। तो मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि प्रचंड बहुमत से हुए चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री कहीं ऐसी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं जो दिशा लोकतंत्र का निषेध करती है। विपक्ष स्वयं भी गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसकी बात को भी बहुत ध्यान से, बहुत विवेक के साथ सुनना पड़ता है, क्योंकि ये देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का देश है। हमारे यहाँ कोई राजा रानी नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सबसे बड़ा राजा है, वही चीजों को तय करता है। और कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के कंटेंट को प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें कहीं न कहीं कोई अंतर्विरोध जरूर है, कोई विरोधाभास जरूर है।
काले धन के मुद्दे पर सरकार को घेरने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब, किस भाषा में दिया जवाब, उसका विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। और अब रविवार, हर रविवार की तरह आज वक्त हो चला है संडे दिन भर का। संडे दिन भर आज राजेश जोशी के साथ।
नमस्कार, बीबीसी हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं प्रसिद्ध पत्रकार, संपादक और मैं तो कहूँगा रिपोर्टर शेखर गुप्ता, जिन्होंने इमरजेंसी का दौर भी देखा है और वो आज का दौर भी देख रहे हैं। आप उनके चेहरे से परिचित हैं, उनके नाम से परिचित हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में उनका चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है। मेरा पहला सवाल यह है कि जो एक बहुत बड़ी बहस हिंदुस्तान में शुरू हो गई है प्रेस की आज़ादी को लेकर, क्या ये गैर ज़रूरी बहस गलत वक्त पर शुरू हुई है या इसका बहुत बड़ा महत्व है?
नहीं देखिए, ये जो प्रेस की आज़ादी की बहस होती है इसका कोई गलत समय नहीं होता। ये बहस हर समय चलती रहनी चाहिए और ये हर लोकतंत्र में चलती रहनी चाहिए। कोई दुनिया में परफेक्ट लोकतंत्र नहीं है जहाँ पे कि प्रेस फ्रीडम के सारे जो मसले हैं ये पूरी तरह से, सारे सवाल जो हैं पूरी तरह से सेटल हो गए हों। तो ये डिबेट तो हमेशा चलनी चाहिए। इस डिबेट में ना कभी इससे नज़र चुरानी चाहिए और ना कभी सुस्ती करनी चाहिए और ना कोताही करनी चाहिए। अब शुरू हुई है तो मैं कहूँगा कि अगर ये
क्यों शुरू हुई है,
अब इसलिए शुरू हुई है कि क्योंकि भारत में रिजीम चेंज हुआ है। रिजीम चेंज डेमोक्रेसी में, वैसे रिजीम चेंज नहीं कहते हम, सरकार चेंज कहते हैं, लेकिन रिजीम चेंज इसलिए कि पहली बार भारत में एक असली राइट विंग सरकार बनी है। अब तक चाहे जो भी सरकार रही वो थोड़ी सी लेफ्ट ऑफ सेंटर या बिल्कुल सेंट्रिस्ट रही, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की सरकार भी
वो भी लेफ्ट ऑफ सेंटर,
एक तो कोएलिशन थी, लेकिन जो जनरल व्यू था वो जो राइट विंग थिंकिंग है या जो RSS, जो राइट विंग का जो आइडियोलॉजिकल प्योरिटी है उसको उन्होंने दबा के रखा हुआ था। तो मैं इस पर भी कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन गलत है, कौन ठीक है, कौन अच्छा था, कौन बुरा है, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक अब फ़र्क आया है। अगर ये सिर्फ बहस होती तो एक अलग बात होती, लेकिन क्योंकि इस बहस के पीछे एक स्टेट पावर है अभी और वो स्टेट पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट पावर हो किसी के ऊपर आप बैन लगाने की, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, आज जिसको एक दिन के लिए लगाया कल को एक हफ्ते के लिए हो सकता है, पाकिस्तान में तो होता रहता है, महीने महीने भर के लिए हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। और बहस जायज़ है, लेकिन बहस में जब स्टेट पावर आती है, जैसे कि आप याद करें एमरजेंसी के समय, इंदिरा जी के समय काफ़ी ऐसी डिबेट में बातें आ गई जो स्टेट पावर से कही गई।
जो ये सरकार है इस वक्त, ये सब वो लोग हैं इमरजेंसी के वेटरन्स, इनमें बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने ये इंदिरा गांधी की सिर्फ इस वजह से भी आलोचना हुई कि प्रेस का गला घोट दिया, लोगों की बोलने की आज़ादी छीन ली। अब उस सरकार पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, गलत सही वो जजमेंट मुझे नहीं करना है, कि वो भी उन चीज़ों को रिविजिट कर रही है।
देखिए, अगर इस सरकार के सूचना मंत्री ये कहते हैं कि आज़ादी तो एक जगह है लेकिन आज़ादी से ऊपर राष्ट्रहित है, बोलने की आज़ादी से ऊपर राष्ट्रहित है,
तो कौन तय करेगा?
तो ये वही बात है जो वीसी शुक्ला ने भी बोली थी। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि साहब व्यूज़ को न्यूज़ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, व्यूज़ आप अलग रखें, न्यूज़ आप अलग रखें। ये एग्जैक्टली सेम भाषण मैंने उस टाइम, तो मैं इमरजेंसी के टाइम तो मैं जर्नलिज्म का विद्यार्थी था, एग्जैक्टली यही लाइन मैंने बंसीलाल से सुनी, चौधरी बंसीलाल से, 15 अगस्त 1975 के भाषण में इंडिपेंडेंस डे के। वो बोल रहे थे कि जी एक तो व्यूज़ होते हैं, एक न्यूज़ होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं आप एडिट पेज पर लिखें और जो फ्रंट पेज पे और बाकी पेज पे सिर्फ खबर लिखें।
इंदिरा गांधी 60 के दशक से लेके 1984 तक रही, बीच में इमरजेंसी की बात आई, उनको भी कहा जाता है कि बहुत ही वो डिक्टेटोरियल तानाशाही प्रवृत्ति की थी। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या बदला है?
नहीं देखिए, इंदिरा जी से अभी कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उतनी ताकत भी नहीं है और ये भारत बहुत बदला हुआ है। भारत में बहुत राज्य हैं जो इस सरकार के पास नहीं है, ना आ सकते हैं। अब वो समय भी चला गया कि आप आर्टिकल 356 यूज करके स्टेट गवर्नमेंट्स को गिरा सकते हैं,
रॉयल ऑर्डर की कोशिश हुई है
पर फेल हुई, ना फेल हुई, और तो और अरुणाचल जैसी स्टेट में, छोटी सी स्टेट में इतना दूर, वहाँ भी फेल हुई, तो अब वो संभव नहीं है। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ताकत थी, अगर 400 सीटें भी आ जाएं तो ताकत वो नहीं है।
टेलीविज़न की जो न्यूज़ वो शाम को अपने ड्राइंग रूम में बैठ के देखते हैं, उस पर कितना भरोसा किया जाए? वो जो पत्रकार करते हैं वो कितने भरोसे के काबिल हैं?
सच बात यह है कि शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी अब किसी न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ नहीं है, हमारे सब न्यूज़ चैनल पर व्यूज़ और डिबेट है। और जो व्यूज़ और डिबेट हैं मोस्टली, अब सबका मतलब है ऑलमोस्ट ऑल, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन और जो डिबेट भी है वो एक तरह की ऑर्केस्ट्रेटेड आर्टिफिशियल बनाई हुई जाली डिबेट है। आप चार इस तरफ, आप चार उस तरफ, आप आपस में भिड़िए, और आमतौर पे मैं आप में से एक साइड पे होऊंगा तो मैं ये फैसला कर दूंगा कि आप ही जीतेंगे, जैसे पुराने जमाने में क्रिकेट होती थी, अंपायर अपने घर के हुए अपने आदमी को बैट पैर पे लगी बिल्कुल मिडिल स्टंप के आगे तो आप बोले नॉट आउट है, दूसरे आदमी को कि बाहर लगी तो आप बोले आउट है। मुझे इस बात पे बहुत गिला है टीवी इंडस्ट्री से, टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री से, कि उन्होंने ये अलाउ कैसे किया, पहले एक्सेप्ट कैसे किया। इसको पहले ही चैलेंज करना चाहिए था कि जो आपने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई कि आप देखें कौन रूल तोड़ रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट कौन तोड़ रहा है न्यूज़ मीडिया में, तो ये जब तक फैशन टीवी था, एंटरटेनमेंट था, वो चलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारे यहाँ फिल्मों के लिए भी सेंसर बोर्ड है और सर्टिफिकेशन बोर्ड है, सेंसरी कहते हैं उसको। लेकिन इसको न्यूज़ में अप्लाई करना एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि इस देश में आज अखबारों को सेंसर करना या अखबारों को कोई खबर छापने के लिए सरकार पनिश करे, अफसर करे या मंत्री करे, ये बात कोई सोच ही नहीं सकता है। एक बार सोची थी इंदिरा जी ने, तो देखिए उनको उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा।
आपने एक ट्वीट किया है, हाँ, इस बात को पूरी
लेकिन ये बात अगर आप टीवी न्यूज़ में कर सकते हैं तो ये
उसका अंत कहाँ होगा,
ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि इसको खींच के प्रिंट में भी ले जाया जाएगा।
तो यही मैं आपसे सवाल पूछ कर रहा था कि इस वक्त आपने एक ट्वीट किया है कि अब तो पत्रकार जो है बिना कहे घुटने टेक क्रॉल करना शुरू कर दिया है, जो
मैं बताता हूँ क्यों किया है, क्योंकि अब सब सोचते हैं शाम को कि हमने पाकिस्तान से लड़ाई करनी है और पाकिस्तान को हरा देना है, तो ये एक नूरा कुश्ती चल रही है पाकिस्तान के साथ,
जहाँ पे पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ भी बोलना तो बहुत सोच समझ के हिचक के बोलना पड़ता है आपको कि कहीं आपको देशद्रोही
नहीं, 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 बड़ा सिंपल ये है कि बैठ के पाकिस्तान को गाली निकालिए, है ना, और बोलिए कि वहाँ पे एक गोली चली, उनके हमारा एक मरा उनके 100 मर गए, अब कौन गिरेगा उनके 100 जाके मरने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सब लोग, किसी को किसी ने कहा भी नहीं कि आप झुक जाइए, लेकिन सब लोग रेंग रहे हैं कि साहब इसी बहाने शायद दिखेगा भी और हमें सरकार से वाहवाही मिलेगी। ये सरकार से कोई फोन नहीं आ रहा है किसी को, पाकिस्तान में तो फिर भी फोन आते हैं GHQ से, भाई ये दिखाओ ये मत दिखाओ, यहाँ से किसी को फोन नहीं आता है।
पाकिस्तान में जो मीडिया है वो अपनी फौज पर तनकीद करता है, अपनी फौज पर कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, किताबें लिखी जाती हैं। हिंदुस्तान में क्या फौज, पुलिस, अधिकारी, ये सब अब आलोचना से ऊपर हो गए पिछले 2.5 साल में।
कि सरकार ने एक तरीके से, और ये सरकार और जो आइडियोलॉजी सरकार की है, ये आर्म फोर्सेस को भी, बहुत ध्यान से बात कहने की है, उसको भी एक आइडियोलॉजिकल कलर देने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इसके पहले भारत में सेना थी नहीं, या जैसे कि इसके पहले भारत में देशभक्ति नहीं थी, तो देशभक्ति और भारत की जो आर्म्ड माइट है, जो शक्ति है सेनाओं की, वो 2014 में थोड़ा ईजाद हुई है, हाँ, तो हमेशा रही है। गलत ये है कि आपका ये कहना कि आप अगर फौज को फौज को तो फिर भी आप क्वेश्चन करें, लेकिन जिस तरीके से सरकार सेना का इस्तेमाल कहीं करती है, और सेना का इस्तेमाल करना भी ज़रा लोडेड बात है, जिस तरह से सरकार अपनी आर्म्ड माइट, देश की जो हथियारबंद शक्ति है, उसका इस्तेमाल करती है अपनी नीतियों में या अपनी डिप्लोमेसी में या अपनी विदेश नीति में, उसके ऊपर अगर आप सवाल उठाते हैं तो वो एंटी नेशनल है। इसका मतलब ये है कि सरकार है, उसने नेशनल इंटरेस्ट, आपका राष्ट्रहित डिफाइन कर दिया, उसके वो एक ग्लास सीलिंग बन गई आपकी, ग्लास सीलिंग का इक्विवेलेंट, उसके नीचे नीचे आप काम करेंगे, उसके ऊपर आप नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, विदेश नीति है, इस पर बड़ी रोबस्ट डिबेट होनी चाहिए हर डेमोक्रेसी में।
फौज को, मिलिट्री को, पैरामिलिट्री को या पुलिस को आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब है?
नहीं देखिए, ये गलत है और इसलिए इसको कंटेस्ट भी करना चाहिए, इस पर डिबेट भी होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि जो रिटायर्ड लोग हैं, फौज के हैं, पुलिस के हैं, वो भी खुल के आएँ और इस बात में डिबेट करें। लेकिन पैराडाइम शिफ्ट तो हुआ है, 2014 का इलेक्शन एक पैराडाइम शिफ्ट है, और ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत इलाकों, बहुत एरियाज में है। जैसे कि आप कहें पाकिस्तान की पॉलिसी है, हम पहले बोलते थे 20 साल से स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट चल रहा है, और उससे मैं मानता हूं कि भारत को बहुत फ़ायदा हुआ है, और ये अटल जी ने इसको फॉलो किया, नरसिम्हा राव ने फॉलो किया, अटल जी के टाइम पे बहुत ज़ोर से फॉलो हुआ, फिर मनमोहन सिंह के समय उसको अब बदल दिया गया है।
ये बदल दिया गया जो आप कह रहे हैं, क्या ये तो इसकी तो तवक्के, इसकी तो उम्मीद थी ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक इतिहास रहा है, गुजरात में एक इतिहास रहा है, उनका 56 इंच की छाती वाला मुहावरा बहुत पॉपुलर हुआ है। तो जब 2014 से पहले वो इलेक्शन दिल्ली के सेंट्रल स्टेज पे आए थे तो बहुत लोगों ने बड़ी उम्मीद से उनको देखा था, आप भी उनमें से एक थे। अब ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इससे आप नाराज़ क्यों हैं?
देखिए, पैराडाइम शिफ्ट से मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि
खुश
हैं, नहीं नहीं मैं खुश भी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ पैराडाइम शिफ्ट हैज टू बी डिबेटेड हर समय, लेकिन सिर्फ ये कहना कि हमने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया और क्योंकि हम सरकार हैं हमें राष्ट्रहित पता है तो आप इसकी जय जयकार की,
तो पैराडाइम शिफ्ट में फौज मिलिट्री अथॉरिटी पुलिस
कि हम ये सब हमारे पार्ट का और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है स्ट्रॉन्ग स्टेट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट पर स्ट्रॉन्ग मिलिट्रिस्टिक स्टेट, चलिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्रिस्टिक हाइपर नेशनलिस्ट स्टेट, ठीक है स्ट्रॉन्ग मिलिट्रिस्टिक हिंदू हाइपर नेशनलिस्टिक स्टेट, तो ईच स्टेप पे आपको डिबेट है।
लेकिन जो लोग
ये कहना कि आप डिबेट नहीं कर सकते और आप खड़े होते हैं और वो रिटायर्ड जनरल भी वही 10-12 हैं जिनको मैं एंग्री मस्ताशेज कहता हूँ, जो कहते हैं आप सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं नहीं मानता कि हमारे देश में कोई बहुत रेयर एक्सेप्शन को छोड़ के कोई भी देशद्रोही है।
क्या क्योंकि क्या, इस क्या देश समाज
में,
का
इस देश में अगर 0.1% लोग भी देशद्रोही होते तो देश बचता ही नहीं।
गुप्ता बहुत सारे लोगों को ये लगेगा जिन जो नई नस्ल के लोग हैं या जिन्होंने वो सब चीज़ें विचारधारात्मक नहीं पढ़ी कि अचानक ये शुरू हो गया है। वीर सावरकर की अगर आप आइडियोलॉजी पढ़ें, उनकी हिंदुत्व वाली किताब पढ़ें, तो उसमें तो साफ लिखा है कि हिंदुओं का सैन्यकरण, क्या इस समाज का मिलिट्राइजेशन हो रहा है?
नहीं देखिए कोशिश है, कोशिश समाज का मिलिट्राइजेशन ही हो रहा है लेकिन एक दिमाग का मिलिट्राइजेशन हो रहा है और वो विजवी पाकिस्तान हो रहा है और उसके इम्प्लीकेशंस हैं क्योंकि जब उसको आप मिलिट्राइज करते हैं विजवी पाकिस्तान तो एक आप चाहें या ना चाहें आपको कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मुस्लिम से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत डिवाइड करने वाली चीज़ है, जो हमारी सेना है उसकी जो इमेज रही है वो बहुत इम्पार्शल रही है। आप अगर भारत में कम्युनल राइट्स का रिकॉर्ड देखें, सांप्रदायिक दंगों का, तो आमतौर पर जब सेना बुलाई जाती है सब दंगाई अपने घर चले जाते हैं।
तो ये इम्पार्शल कब तक रहेगी इमेज?
देखिए ये मैं समझता हूँ
इमेज या स्ट्रक्चर,
मैं समझता हूँ कि ये इम्पार्शल रहेगी क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जो हमारी आर्म फोर्सेस की
भी रहेगी,
आर्म फोर्सेज की बहुत है और ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डिबेट है, इसके ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और हर बात में ये नहीं है कि सरकार सक्सीड हो रही है, इसीलिए 2.5 साल के अंदर अंदर इस सरकार के आप और हम ये बातचीत कर रहे हैं। हम तो कोई अंडरग्राउंड लोग नहीं हैं और हम तो कोई बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं हैं कि कश्मीर को जाने दो, हम तो कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है पर कश्मीरी भी भारत का हिस्सा है, ये तो डिबेट है ना।
भैया मैं आपको दो चीज़ों के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक तो पुलिस फौज इन पर सवाल करना ये किसी थिंक टैंक से नहीं आ रहा है, ये किसी इंडिविजुअल से जो सरकार समर्थक है उससे नहीं आ रहा है, इस देश के गृहमंत्री ने ये कहा है कि आदत सी पड़ गई, किरण रिजिजू की बात मैं कर रहा हूँ कि आदत सी पड़ गई है लोगों की कि वो आलोचना करने लगते हैं, अथॉरिटीज़ को सवाल मत कीजिए, यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, यही किरण रिजिजू कह रहे हैं, ये जो एक सेंक्टिटी मिल गई है
ना, बात सुनिए
आर्म्ड फोर्सेस को जिनके पास गन है,
कहना एक बात है लेकिन क्या सब लोग उस बात को सुन रहे हैं? बहुत लोग,
कितने लोग सुन रहे हैं?
बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जो उस बात को एको कर रहे हैं खास करके सोशल मीडिया पे या जैसे आप कहेंगे कुछ टीवी चैनल्स पे, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको दबाव है, वो इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि सरकार उन्हें कुछ दे रही है, वो इसलिए कर रहे हैं कि इससे बस हमको वाहवाही मिलेगी।
मुझे मालूम है कि आप शायद नारेबाजी या सड़क पर निकलने के आंदोलन पे उस पर आपका भरोसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा हुआ है जब राजीव गांधी थे और वो प्रेस डिफेमेशन बिल लाए थे सड़कों पे रामनाथ गोयनका और सब लोग इंडिया गेट पे निकले थे, शायद आप भी उनमें रहे होंगे, आज वैसी स्थिति अभी नहीं है?
नहीं देखिए अभी नहीं है लेकिन जब स्थिति आए तब ऐसे करना चाहिए, आप भी देखिए भारत
सड़कों पे भी उतरना चाहिए।
भारत के इतिहास में एक या दो बार ये हुआ होगा कि एडिटर्स या बड़े पत्रकार या जाने माने पत्रकार सब सड़क पे उतरे हों, तो ये एक्सेप्शनल बात है। अगर मान लीजिए कल को ऐसे टीवी न्यूज़ टीवी पे बैन चलते रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एनडीटीवी अपना केस चलाए और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करे क्योंकि आइडिया ही गलत है, ये प्रेसिडेंट गलत है, लेकिन अगर ये चले आ गए तो मैं सोचता हूँ कि सड़क पे उतरने का समय आ जाएगा क्योंकि हम लोग अगर अपनी आज़ादियों की परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आज ये सोचना कि राज तो उसके पीछे आए मेरे साथ बहुत खुश है सरकार, ये बहुत गड़बड़ है क्योंकि कल को सरकार बदलेगी, यही मैं उन लोगों से
ये आप कह रहे हैं कि सरकार को सरकार बदलेगी, जिस तरह का अभी माहौल है, जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे तो ऐसा लगता
नहीं। नहीं देखिए वो तो सरकारों का क्या पता है, राजीव गांधी जब सत्ता में
क्या
आए
कुछ
थे,
परमानेंटली बदलने जा रहा है इस हिंदुस्तान में, इस नेशन स्टेट में,
हिंदुस्तान बहुत बड़ा जगरनॉट है, इसको बदलना हिलाना बहुत मुश्किल है। ये ठीक है चलता है तो एक बहुत फोर्स के साथ चलता है क्योंकि सब लोग इसमें धक्का लगाते हैं, लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा इसमें जोड़ तोड़ आप इसमें नहीं कर सकते हैं। और देखिए राजीव गांधी जब पहले सत्ता में आए थे 400 से ऊपर सीटें थी, अब राजीव गांधी कुछ भी कहते थे तो हमारी माँ की आंखों से आंसू आते थे कि कितना नौजवान सिंसियर कितनी अच्छी बात कर रहा है। 2.5 साल के अंदर अंदर राजीव गांधी कुछ भी कहते थे
तो
हमारे बच्चे भी हंसते उसके ऊपर। तो ये तो राजनीति की हवाएं हैं, कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल को आएंगे कि नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। और सत्ता में कोई भी आए, जो हमारी जो बेसिक जो बुनियादी वैल्यूज़ हैं वो सेम रहती हैं, और अगर उनके ऊपर कोई आँच आती है तो सबको उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए।
शेखर गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने वक्त निकाला, शुक्रिया।
संडे दिनभर में वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता से बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। आप हमें ईमेल के जरिए भी खत लिख सकते हैं। पता नोट करें, hindi.letters@bbc.co.uk। और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं खेल समाचारों के लिए।
ऐसा दीप, अगर खेल समाचारों में भारत और इंग्लैंड के बीच आज राजकोट में समाप्त हुए पहले टेस्ट मैच की बात की जाए तो आज पांचवां और अंतिम दिन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। आज इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 310 रनों का लक्ष्य सामने रखा, जिसके जवाब में जब खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 6 विकेट खोकर 172 रन था। हालांकि ये काफ़ी ठीक ठाक स्थिति लगती है, लेकिन वास्तव में भारत इस टेस्ट मैच में बहुत ही मुश्किल स्थिति में तब फंस गया था जब भारत के 6 विकेट 132 रन पर गिर चुके थे। दूसरी पारी में जब भारत ने शुरुआत की तो गौतम गंभीर क्रिस वॉक्स की गेंद पर जो रूट को कैच दे बैठे, उनका खाता तक नहीं खुला था और स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर भी 0 था। उसके बाद किसी तरह से चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय ने दूसरे विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की। मुरली विजय रशीद की गेंद पर हसीब हमीद को कैच दे बैठे, लेकिन तब तक मुरली विजय ने 89 मिनट विकेट पर बिताए और महत्वपूर्ण 71 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाया। चेतेश्वर पुजारा 18 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद अजिंक्य रहाणे केवल 1 रन बनाकर जब मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हो गए तब भारत के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। ऐसे में विराट कोहली ने खूंटा गाड़ा, वो 98 गेंदों का सामना करने के बाद 6 चौकों की मदद से 49 रन बनाकर नाबाद रहे। आर अश्विन ने उनके साथ एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय बिताया जब उन्होंने 32 रन बनाए। उसके बाद रिद्धिमान साहा जब 9 रन बनाकर आउट हो गए तब एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी, लेकिन ऐसे में रविंद्र जडेजा ने दिलेरी से बल्लेबाज की, उन्होंने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए इस दौरान उन्होंने 6 चौके भी लगाए। इससे पहले आज जब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 260 रन के स्कोर पर समाप्त की तो इसमें एलिस्टेयर कुक अपने टेस्ट करियर का 30वां शतक जमाते हुए 130 रन बना चुके थे। वो आर अश्विन की गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच हुए और उनके नए जोड़ीदार हसीब हमीद, जो कि अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन 82 रन बनाए और इस बल्लेबाज ने दिखा दिया कि आने वाले समय में भारतीय गेंदबाजों के लिए वो कितनी बड़ी मुसीबत साबित होने जा रहे हैं। बेन स्टोक्स 29 रन बनाकर नाबाद रहे और आज मैच समाप्त होने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा,
Sometimes the situation becomes like that even on flat wickets you tend to make mistakes. So
जब इस तरह का मैच में सिचुएशन आती है कि माना जाता है कि फ्लैट विकेट है लेकिन कुछ गेंद टर्न भी करती है तो वाकई काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसे में बल्लेबाज को संभल कर खेलना पड़ता है ताकि वो अनावश्यक रूप से या फिर जल्दबाजी में कैच ना दे बैठे। तो विराट कोहली का अनुभव आज भारत के काम आया, लेकिन निश्चित रूप से आज इंग्लैंड की टीम ने दिखा दिया कि इस टेस्ट मैच में वो हर मोर्चे पर कामयाब रही। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बोलापाडू में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज़ की महिला क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। ये भारतीय महिला टीम की लगातार दूसरी जीत रही। भारतीय महिला टीम के सामने जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य था जो उसने 38 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया।
बहुत शुक्रिया। भारत में बजने वाले हैं रात के 8, निकल आया है चांद, देखिए जाइए छत पर, निकलिए खुले आंगन में, आसमान के नीचे आइए, देखिए चांद आज 70 साल के बाद पृथ्वी के सबसे करीब है, आज सुपर मून है, बहुत बड़ा चांद आपको आज दिखाई देगा, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। होंगी और भी खबरें अगले कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट प्रतिबंधित किए जाने का आज 5वां दिन है। रविवार को भी बैंक खुले रहे जहां नोट बदलने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी आई है और लहरों ने दक्षिणी द्वीप के उत्तर पूर्वी तट को छुआ है। अधिकारियों ने लोगों से तटीय इलाके छोड़कर ऊपरी इलाकों में जाने की अपील की है। इराक के सैन्य बलों का कहना है कि उन्होंने प्राचीन शहर निमरूद को स्वघोषित इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी मदद कर रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण ठीक 1.5 घंटे के बाद। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।